नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस है। इस साल की थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट करूंगा। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को देश में मतदान दिवस मनाया जाता है। देश की लोकतांत्रिक नींव रखने के लिए जनता को मतदान करना बहुत जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग आज 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मना रहा है। ज्ञात हो कि 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। भारत के 18 वर्ष की आयु के अधिक के लोग मतदान का अधिकार है, वे अवश्य मतदान कर सकते हैं, जहां जनता से जनता के लिए और जनता का शासन है। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। गायकवाड़ सर, मोबाइल वाले पर स्वागत सर आपका।
जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आज के राष्ट्रीय मतदान दिवस के उपलक्ष्य में बधाई भी देना चाहूंगा कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था को अपनाए हुए जहां भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से अपना नेता चुनने की स्वतंत्रता हमको प्राप्त। जी साहब बोलिए।
जी सर। सर, 13वें राष्ट्रीय मतदान दिवस पर क्या संदेश है सर आपका?
25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। तो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था एक अच्छी शासन व्यवस्था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन। यहाँ मतलब मतदाता को मालिक माना गया है। और हमारे यहाँ पे सारी व्यवस्था संविधानिक स्वरूप में निर्धारित की गई। कल देखिए, अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय, तो उस संविधान के अंतर्गत एक ऐसी शासन व्यवस्था निर्माण का अधिकार हम सबको मतदान के माध्यम से मिला है कि हम मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते। यहाँ देखिए, स्वतंत्रता जो संविधान है, उस संविधान में हमको चुनने का अधिकार मिला है। ये शायद विश्व के किसी देश में नहीं होगा कि हम अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनते और वो जाके सरकार बनाता है, बाद में वो हमारे लिए शासन करता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ हर व्यक्ति को अपना हक है अपने हिसाब से उम्मीदवार चुनने का। और ये व्यवस्था हमको अपने संविधान के माध्यम से आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयोग हमारे लिए काम करता है, उसका उद्देश्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, क्योंकि जो आर्टिकल 324 है, ये निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है इसमें। तो ये निर्वाचन आयोग हमारे लिए व्यवस्था करता है, इसलिए जो जन जागृति बढ़ाने का जो दायित्व है वो निर्वाचन आयोग है विभिन्न जन समुदाय के बीच में, क्योंकि वोटा परसेंटेज हमारा घट रहा था। तो वोटा परसेंटेज मतलब जो जन भागीदारी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए साहब, कि हमारे यहाँ पे सीटों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है, प्रतिशत के आधार पर नहीं, सीट किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरे जैसे जो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिजीवी मानते हैं, टीवी के सामने बैठ के बड़ी बड़ी बहस करते हैं, लेकिन जब वास्तविक यथार्थ धरातल में मतदान करने की बारी आती तो हम मतदान नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, भारतीय लोकतंत्र में अस्थिरता निर्मित हो रही है। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 24 दलों की सरकार बनी थी। जब 24 दलों की सरकार बनेगी साहब, तो अस्थिरता निश्चित है, कोई भी सरकार फुल डिसीजन नहीं ले सकती। अभी देखिए, अभी जो मोदी सरकार जो आई है, पूर्ण बहुमत में है मध्य प्रदेश में सरकार। देखिए, आपको पता है कि पूर्ण बहुमत नहीं था तो क्या हालत हो गई, 6 माह के बाद मुख्यमंत्री बदल गया, फिर नए मुख्यमंत्री की स्थिति। तो यहाँ दो चीज है, सरकार शासन भले ही किसी पार्टी का हो, लेकिन आप खुद देखिए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल रहा तो दोबारा चुनाव हो रहा। और भारत में देखिए, एक समय अटल जी को 24 दलों की मिलकर सरकार बनी तो सरकार चल नहीं पा रही, फिर जब उनको पूर्ण बहुमत मिला तब जाके सरकार बनाई। तो अभी मोदी जी के समय देखिए, पूरी पूर्ण बहुमत है तो डिसीजन भी वैसे ही हो रहे। तो जब आपकी सरकार स्थिर रहती है तो लोकतंत्र का आधार मजबूत होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, विदेशी कंपनियां हमारे ऊपर निवेश करने में सक्षम हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है ना, एक मतदाता के ऊपर डिपेंड है। और मतदाता यदि सुनिश्चित कर ले तो उसके लिए जरूरी है कि हमको उसके बीच में जाके मतदान का क्या महत्व, ये बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने राष्ट्रीय मतदान दिवस निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे बीच में लाया जाता है और मतदान करने के लिए हमको जागरूक किया जाता है। जी सर।
जी सर। सर, भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में मतदान को लेकर ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता है। सर, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, ग्राम की जनता भी मतदान में हिस्सा ले, वे भी अपना अधिकार समझे और वे भी अपना एक प्रतिनिधि भेजे, ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का जो जो प्रतिशत होता है वो निरंतर कम होता है, क्या इसमें किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे?
मतलब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ, आप सही कह रहे हैं, आपकी सहमति बिल्कुल सही है, पर मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, शहरी परसेंटेज कम हो रहा है। मैंने कहा ना हमारे जैसे अपने आप को बहुत भौतिक समझने वाले लोग वोटा परसेंटेज में भागीदार नहीं बनते, टीवी के समझता है साहब, व्यक्ति वोट करना चाहता है बस उसको वोटिंग के लिए। जिस तरीके से राजनीतिक दल जो प्रलोभन देते, अभी देखिए स्थानीय स्तर पे जो चुनाव संपन्न हुए थे तो कहीं दारू की बोतल बट रही थी, कहीं पैसा बट रहा था, तो ये जो तरीके इस पे निर्वाचन आयोग को काम करना पड़ेगा। बाकी वोटा परसेंटेज नहीं है वहाँ, हमारे यहाँ पे हमारा जो लोकतंत्र है वो अर्थतंत्र में परिवर्तित हो जा रहा है। अर्थतंत्र मतलब यहाँ योग्य सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं हो रहा। अब देखिए आधार कार्ड के जो प्रमुख थे नंदन नीलकणी वो चुनाव हार गए साहब, टीएन शेषन साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो हमारे यहाँ पे अर्थतंत्र बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। अभी देखिए स्थानीय चुनाव में करोड़ों की बाजी लग गई, तो आप खुद सोचिए, जनता को खुद समझना चाहिए कि पैसा दे लेके यदि अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो उसका साथ 5 साल क्या होगा। आप 50 रुपए ले रहे हो, 100 रुपया ले रहे हो, 500 रुपया ले रहे हो, लेकिन उस 500 के पीछे वो सामने वाला 50 करोड़ रुपया कमाता है, 50 लाख रुपए कमाता है, अरबों रुपया कमाता है, क्योंकि उसके वो राजनीति में आया क्योंकि आपको पैसे इसीलिए दिया क्योंकि वो योग्य नहीं है। योग्य उम्मीदवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ऐसे कई मतदान केंद्र है जहाँ पे निष्पक्ष और बहुत जबरदस्त मतदान होता है और बहुत अच्छे लोगों को चुन के आता है। आप देखिए संसद में जाइए, 144 लोग अपराधी प्रवृत्ति के, बस उनका फाइनल डिसीजन होना है तो सारे जेल में जाएंगे सब के सब। तो ऐसे लोग यदि मतदान के माध्यम से चुन के आ रहे तो वहाँ अर्थतंत्र मजबूत हो रहा ना, लोगों की रुझान। राजनीतिक व्यक्ति का जब नाम लिया जाता है ना तो मन से ना मतलब एक प्रकार का श्राप निकलता है। पहले के देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जब उनका निधन हुआ तो उनके डायरी में केवल 100 रुपया निकला था। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि राजनीतिक नेतृत्व वाला कौन सा बिजनेस करते भाई। वो जनता को भी बताते कि देखो हम लोग इस माध्यम से इतना करोड़ इतना अरबों का कारोबार है हमारे पास, और जो मतदाता राजनेताओं को चुन के दे रहा है वो मतदाता अभी भी कार्यकर्ता झंडी चिल्ला रहा जिंदाबाद कह रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ये बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनका रुझान कम हो रहा। बाकी ग्रामीण मतदाता आज भी वोट डालने जाता है, बस उसको इस बात का इंगित करना पड़ेगा कि जैसे तू अपने आधार कार्ड के आधार पर विभिन्न योजनाओं का फायदा उठाता है, वैसे ही यदि तू मतदान करेगा तो तेरे भविष्य की तेरे बच्चों का भविष्य निर्धारित होगा। ये बात पहुंचाना है। बाकी परसेंटेज उतना कम नहीं हुआ है, बड़ा है, लेकिन सही व्यक्ति आ जाए। कई लोग क्या होता हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था चलती है, संगठनात्मक व्यवस्था के माध्यम से अयोग्य लोगों को चुन के दिया। अब नोटा का प्रयोग तो करना हमको आता है, लेकिन नोटा का सिस्टम क्या, सिर्फ आप वोट डालते हो उसके बाद कुछ होता ही नहीं। तो ये भी सुधार की जरूरत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जबरदस्त सुधार होगा। अब मतदाता जागरूक हो गया, अब वो धर्म की राजनीति नहीं करता, विकास की राजनीति करता है। और अभी इस बार का जो गणतंत्र है वो मतलब एक प्रकार की साक्ष्य है कि भारत जो है ना विकास, अब आप देखिए विश्व स्तर पे भारत को इतना महत्व दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मोदी जी ने नोटबंदी की तो कह रहे थे कि ऐसा वैसा, लेकिन आपको पता होगा कि अंबेडकर साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, उनकी जो थ्योरी थी पीएचडी की थ्योरी, उसमें लिखा था कि सरकार को नोटबंदी करना चाहिए। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है नोटबंदी करने से, नकली नोट का पूरा कारोबार ठप्प हो गया, तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। वहां आटे के लिए लड़ाई हो रही है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, आज हम लोग विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये तकनीकी मसले होते साहब, ये जनता को समझना चाहिए। हम लोग हमेशा कांदे और प्याज और इसके आलू टमाटर दाल चावल के जिसमें रहते, अमेरिका फ्रांस देखिए विदेश नीति के आधार पर चुनाव होता है। तो ये तब होगा जब हम अपने संविधान को जानेंगे, अपने मतदान के महत्व को समझेंगे। हमारे यहाँ पे केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई कि वो पता नहीं कैसे किस तरह से चुनाव की व्यवस्था करके रखी है कि यहाँ सब अर्थतंत्र मजबूत होते जा रहा है। और जनता भी समझना चाहिए, योग्य लोगों को चुन के भेजोगे तो अपने बच्चों को जॉब मिलेगा। अभी देखिए पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, कई लोगों ने आत्महत्या कर दी, कई लोग बेरोजगार है, कई बच्चों की शादी नहीं जुड़ी क्योंकि उनकी नौकरी लगी थी लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद। यदि हम पैसा लेके भी अपना मतदान करते हैं तो हमारी हालत यही हाल होने वाला है। महंगाई बढ़ रही है, अरे तो महंगाई क्यों बढ़ रही है ये भी तो सोचो। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि विकास हो रहा है, नए नए प्रोजेक्ट बाहर आ रहे हैं, तो कुछ समय तो सहन करना ही पड़ेगा। जब कभी कोई घाव होता है, घाव में हम दवा लगाते हैं तो कुछ समय तो वो तकलीफ देता है, लेकिन वही दवा आपके लिए एक दिन अमृत बन के आपको ठीक कर देता है। तो ऐसी लोकतंत्र में साहब महंगाई भी बढ़ रही है, पता है मुझे भी कष्ट होता है महंगाई बढ़ रही है। पहले मैं 75 रुपए पेट्रोल लेता था, आज 110 रुपए लेता, ठीक है, लेकिन उसके अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सारी योजनाएं भी तो आ रही है ना, इसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जिस दिन आपको समझ में आएगा तब आपको सही मायने में अपने वोट का महत्व समझ में आएगा।
जी सर, सर मेरा अंतिम सवाल है और संक्षेप में है सर, क्या सर एक ग्रामीण क्षेत्र से कोई युवा अगर रोजगार के लिए बाहर गया है और वे अगर किसी कारणवश वापस नहीं आ पाया मतदान करने के लिए, तो इनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई जाए ताकि ये भी मतदान कर सके?
देखिए इसमें अभी एक नई व्यवस्था आ रही है, मतलब पोस्टल पोस्टल मतलब बैलेट वाला सिस्टम आ रहा है, तो अभी यूज भी हुआ था पिछले बार, तो वैसा कर सकते, जैसे जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगती है उनको तो वैसे ही करवा रहे, तो वैसा हो सकता है। पिछले बार शायद इसका प्रयोग हुआ भी है बैलेट सिस्टम का, ये पोस्टल वाला है ना, तो उसमें हो सकता है।
तो आज हमारे
की ऑनलाइन ऑनलाइन मतदान करने की भी बात हो रही है, जैसे अमेरिका में होता है, तो वो उससे ना बहुत सारे लोगों को सुविधा मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है मतदान हमको ऐसा करना है कि स्थिर सरकार बने, जब स्थिर सरकार बनती तो अर्थतंत्र अपने आप मजबूत होता है, देश की प्रगति अपने आप होती है।
जी सर, राष्ट्रीय मतदान दिवस पर आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
बड़ा वैलेंस आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।